प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी महाराज द्वारा विषय जगन्नाथ की कथा दिनांक 21 जून 2013 को नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में दिया गया है।
जगन्नाथ की कथा सुननी है। सतयुग में, ये सतयुग की कथा है। राजा इंद्रद्युम्न राजा थे और ये राजा को हमेशा क्रेविंग रहता था, एक झंखना रहती थी कि मुझे भगवान के दर्शन, भगवान का मंदिर, भगवान की सेवा पूजा अर्चन करना है। तो मुझे वो बिंदु, वो माधव, कौन से माधव, नीलमाधव, तो मुझे नीलमाधव कहाँ मिलेंगे तो ढूंढते रहते नीलमाधव। और नीलमाधव को स्वप्न में कहते हैं कि नीलमाधव मैं यहाँ हूँ और मेरा मेरा मंदिर बनाओ, मेरी सेवा करो। तो हमेशा नीलमाधव की खोज में रहते थे राजा। तो उन्हें कहीं ब्राह्मण लश्कर सब कुछ हर दिशा में भेजे और एक ब्राह्मण था विद्यापति। तो विद्यापति ब्राह्मण एक जंगल में जाता है तो वहां जंगल में एक जंगली लड़की ललिता होती है। तो आहिस्ते आहिस्ते वो लड़की में वो अपना कार्य करने के लिए वो प्रेम करता है और बाद में शादी भी करता है। तो शादी करके वो जो भील का राजा था, जो हर रोज नीलमाधव की सेवा करने के लिए जंगलों में ऊंचे तक वो जाता था सेवा करने के लिए नीलमाधव की, तो जब वो वापस लौटता था सेवा करके तो उनके शरीर से सुंदर दिव्य सुगंध आती थी। तो ये विद्यापति को वैसे पता ही चल गया कि ये हर रोज नीलमाधव की सेवा में ही जाता होगा और मुझे ये नीलमाधव के दर्शन करने हैं, लेकिन वो किसी को नहीं ले जाता था साथ में। तो अपनी पत्नी ललिता को कहते हैं कि मुझे जाना है उनके साथ, कैसे भी अरेंजमेंट करो। तो वो पिताजी को बहुत बार विनती करती है। बाद में पिता उनके एग्री होते हैं कि ठीक है, मैं उनको ले जाऊंगा, लेकिन कंडीशन है कि वो रास्ता किसी को पता नहीं होना चाहिए और वहां कोई जा नहीं सकता मेरे बिना नीलमाधव की सेवा करने के लिए। तो कंडीशन यह है कि पट्टी बांध के उनको ले जाऊंगा ताकि उनको रास्ता और कहाँ है क्या है पता न चले। तो ब्राह्मण भी विद्यापति भी बुद्धिमान था तो उनने राई समझते हो ना, मस्टर्ड सीड उनके जेब में रख लिए और वो बीलों का राजा जो सेवा करने जाता था विद्यावासु, और उनका नाम क्या था, विश्ववासु आगे चलता था और ये पीछे चलता था ब्राह्मण विद्यापति। तो ये जो राय के दाने थे वो छोड़ता गया पीछे पीछे राय। तो राय बहुत जल्दी उग जाती है, इट्स अ वीड एवरीवेयर, जहां भी फेंको उनको उसमें से तुरंत प्रकट हो जाएगी, इसलिए राय के दाने छोड़ता गया। और ऑल द वे अप टॉप ऑफ द माउंटेन जहाँ नीलमाधव थे वहां गए, तो वहां उनकी पट्टी उनने छोड़ी और नीलमाधव के दर्शन करवाते हैं। तो जैसे ही दर्शन वो करता है तो बाजू में एक बड़ा सुंदर लेक था, तड़ाव, तो तुरंत ही वहां ऊपर एक पक्षी था, मे बी कौवा, तो वो कौवा नीचे पानी में गिरा और तुरंत उनका चार हाथ वाला वैकुंठ का जो उनका स्वरूप, तो उन्हें ओरिजिनल स्वरूप मिला और वो वैकुंठ वापस गया। उनके नजरों के सामने देखा तो उन्हें सोच लिया कि ये जो कहा है वो सच ही है और यही नीला माधव है, इनकी साबिती प्रूफ यही है। तो उनको निश्चय हो गया कि ये नीला माधव है और बाद में पट्टी बांध के वापस आते हैं वो सेवा करके। तो बाद में वो उनका काम बन गया ब्राह्मण का, तो वापस आते हैं किंग इंद्रद्रुम्न के पास और उनको कहते हैं कि नीला माधव के मैंने दर्शन किए हैं और आपको भी मिलाऊंगा। लेकिन मीनवाइल वो स्वप्न में इंद्रद्रुम्न को नीला माधव कहते हैं कि वो आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे बड़े बड़े लॉग्स लकड़ी बड़ा लकड़ लंबा और चौड़ा और तीन लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा, तो ये लकड़ी आप ले लेना और आप आपके महल में आके उनमें से मेरी मूर्ति कार करना मूर्ति, और वो मूर्ति बाद में मंदिर में एस्टेब्लिश कर सके, बड़ी बड़ी सेवाएं और प्रसाद वितरण के अरेंजमेंट करना, ऐसा स्वप्न देखता है। तो सुबह वो जाता है समुद्र किनारे, तो वहाँ बहुत बड़े लॉग्स वुडन लॉग्स लकड़ी के बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी लकड़ी आती है तैरती हुई, तो वो ले जाता है अपने महल में और महल में लाके उनको कार करने की मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी के रूप में मैं आऊंगा। तो जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियां कार करने के लिए उनके राज्य के कई शिल्पियों को बुलाए, तो हर शिल्पी आके कोई सीख हो जाता है, उनके औजार टूट जाते हैं और कोई भाग जाते हैं, किसी से मूर्ति बनी नहीं। तो बाद में खुद ब्रह्मा शिल्पी का रूप लेके राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन शर्त है कि मैं बेसमेंट में भोयरे में मूर्ति बनाऊंगा और कोई भी दरवाजा खोलेगा नहीं, अगर खोलेगा तो मैं उस वक्त मूर्ति बनाना छोड़ दूंगा। तो 15 दिन हुए मूर्ति बनाते हुए, कोई आवाज आता नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो राजा ने सोचा कि मूर्ति बना दी होगी और कोई आवाज नहीं आता है, वो अंदर है कि नहीं, उन्हें शक हुआ। तो उन्हें दरवाजा खोला तो देखा कि वो मूर्ति का कार्विंग हो रहा है और ब्रह्मा अर्थात जो स्कल्पचर था शिल्पी, तो उन है विश्वकर्मा मेरे ख्याल से ब्रह्मा जो भी हो ओके विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा ने जो हम देखते हैं जगन्नाथ जी वो शेप में मूर्ति का निर्माण किया था और वहां ही उनने खोल दिया दरवाजा, तो वहां ऐसे रूप में मूर्ति रही और विश्वकर्मा चले गए। तो राजा को स्वप्न देते हैं भगवान जगन्नाथ के, मैं यही रूप में मेरी आप पूजा करो और कलयुग का अवतार मैं हूँ और बड़ा मंदिर आप बनाओ और मैं कलयुग में प्रसाद का वितरण करूंगा, बहुत वितरण, जो भी आएगा मेरे दर्शन प्रसाद लेके जाएगा। तो ऐसे बाद में राजा ने मंदिर बनवाया जगन्नाथपुरी में और तीनों मूर्ति की स्थापना की और बड़े बड़े पूजा के साधन सामग्री, किचन 600 चूल्हे हैं किचन में, तो प्रसाद इतना बनता है। जो भी दर्शन आता है आनंद बाजार में प्रसाद, अभी तो थोड़ा बाय करना पड़ता है लेकिन फ्री में भी वितरण होता है। वहाँ राइस प्रसाद बहुत बनता है जगन्नाथपुरी में, राइस प्रसाद का वितरण बहुत मात्रा में होता है। और वहाँ एकादशी का कोई एकादशी ऑब्जर्व करनी नहीं होती क्योंकि राइस प्रसाद का वितरण हर रोज होता है, तो राइस प्रसाद वहाँ खाने में कोई हर्जा नहीं होता। वहाँ एकादशी को उल्टी लटकाई हुई है एकादशी, तो जगन्नाथ जी का प्रसाद में कोई बाधा नहीं है। तो ये जगन्नाथ जी ऐसे प्रकट हुए कलयुग, कलयुग में हर जीवों का कल्याण करने के लिए। और अभी पंडित लोग गोरे लोगों को और शूद्र लोगों को जाने नहीं देते हैं, इसलिए बाहर जगन्नाथ जी का दर्शन करवाने के लिए बाहर सिम्हा गेट है, वहां से दर्शन कर सकते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की कथा, और कई कथाएं हैं। और लेट्स सी, रथ यात्रा के दूसरे दिन जब रथ यात्रा निकलती है तो वो रात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी रथ में ही गुंडीचा मंदिर के बाहर रथ में ही आरूढ़ रहते हैं। और वो सुबह 4 बजे 4:30 बजे आप जो भी शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जगन्नाथ जी को छू सकते हैं, जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते हैं। वही एक समय है जो आप जगन्नाथ जी के पास नजदीक जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है जिनको, जो भी रथ यात्रा में जाए। दूसरे दिन सुबह हम गए थे, आई थिंक पंडित ले गए थे ना पंडा हमें, लेकिन समय से जाना होगा 4:30 बजे रथ पर, 4:30 से लेके 3-4 घंटा। ओके, रथ यात्रा की स्टोरी। तो रथ यात्रा की कथा ये है कि मैं कथा करता रहूं जब तक आप चाहें, मुझे हर्जा नहीं है, लेकिन यू हैव टू लिसन केयरफुली। सो बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रभु जी कहते हैं कि रथ यात्रा की कथा, तो ये थोड़ी सी कर लेते हैं कि भगवान जब द्वारिका में राज्य करते थे, द्वारिकाधीश, तो तब एक दिन का समय था जब सूर्य ग्रहण होने वाला था। तो सूर्य ग्रहण के दिन पुराणों में कथा आती है कि सारा भारत के लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं और वहां मेला लगता है सूर्य ग्रहण का, और वहां सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड के बाजू में लेफ्ट साइड पे सूर्य कुंड है, वो सूर्य कुंड में स्नान करना होता है। जब ग्रहण खत्म हो जाए, ग्रहण समाप्त हो जाए, तो वो सूर्य कुंड में स्नान करना होता है। तो भगवान राज्य कर रहे थे द्वारका, तो राजा थे, तो राजा के वेश में मुकुट और आयुध और रथ और सिपाही, मंत्री, राणिया और थाट बाट, राजा बन के भगवान कुरुक्षेत्र उत्सव मनाने गए, सूर्य ग्रहण का उत्सव, स्नान करने के लिए। और व्रज से सारे भारत से लोग जाते हैं। इसी तरह व्रज से भी नंद महाराज, जसोदा माई और राधा रानी, गोपियां, अष्ट सखी, सब व्रजवासी भी अपने शस्त्र सरंजाम, गाड़ी, बैल और सब पशु वगैरह लेके कुरुक्षेत्र जाते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो वहाँ भगवान की रानी और रोहिणी के साथ के बीच में वार्तालाप होता है। रोहिणी के साथ, रोहिणी तो रोहिणी भगवान की लीलाएं बताती है और सब रानियां सुनती हैं। तो सुभद्रा वहां होती है, बाहर गेट पे आए सुभद्रा देवी रोक लेती है। तो जब रोहिणी भगवान की कथा और उनका भाव प्रदर्शित करती है तो सब भाव में आ जाते हैं और भगवान सुभद्रा भी भाव में आ जाती है। तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, भगवान की भी आंखें और स्माइल। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का भाव वाला स्वरूप बन जाता है भगवान का। और बाद में जब ये थाट बाट सब कुछ देती है राधा रानी और गोपियां, तो राधा कृष्ण को मिलती है तो राधा रानी कृष्ण को कहती है, सोलिटरी से उनका संगम हुआ तो राधा रानी कहती है कि राधा कृष्ण करे निवेदन, से तुमी से अमी से नव संगम, तथापि अमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन प्रेम समुद्रे नहीं यहाँ एक कण। अर्थात राधा रानी कृष्ण को निवेदन करती है कि आप वही हो, मैं वही हूं, लेकिन यहाँ आप राजा के भाव में मुकुट और यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि और ठाट बाट अलग है, तो उससे मुझ में भाव पैदा नहीं होता। राधा कृष्ण करे निवेदन, तो इसलिए वो निवेदन करती है। क्या निवेदन करती है? सही तो भी सही हमी, आप वही हो मैं भी वही हूं, तथापि हमार मन हरे वृंदावन, फिर भी मुझे मेरा मन वृंदावन की ओर जा रहा है। वृंदावन उदय करो अपनारे चरण, वृंदावन में आपके चरण डालो, चलो वृंदावन, कुरुक्षेत्र से वृंदावन चलो। तो कृष्ण राधा रानी क्यों ऐसा, क्योंकि जो वृंदावन में प्रेम समुद्र का आस्वादन जो है वो उनका एक कण भी यहाँ मुझे नहीं दिखाई देता, न मुझे वो प्रेम का आस्वादन मिलता है। तो आपका चरण वृंदावन में डालो, चलो वृंदावन, ऐसी विनंती करती है राधा रानी। ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक रथ यात्रा में गुनगुनाते हैं कि राधा कृष्ण करे वृंदावन करे निवेदन, सही तुम सही अमी सही नव संगम, तथापि हमार मन हरे वृंदावन। तो भगवान कहते हैं ठीक है वृंदावन चलते हैं, लेकिन ये रथ के घोड़े हैं, घोड़े नहीं, आप सब घोड़ा बन जाओ, गोपियां राजा रानी सब घोड़े बन जाओ और ये रथ खींच के वृंदावन ले चलो। तो चलते हैं, कंडीशन लगाई। तो गोपियां तैयार हो गई और भगवान को रथ से खींचने लगी वृंदावन की ओर, और ये रथ यात्रा की शुरुआत वृंदावन जगन्नाथ की कथा हो गई। ओके, हरे कृष्ण।